राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यामुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी। यमुनातीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे। जय गिरि गोपाल जय गिरि गोपाल। जय राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। व्रज भूमि वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की। ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिओटीज ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिओटीज ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिओटीज All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्कंद 5 अध्याय 24वां श्लोक क्रमांक 9 से लेके 18 तक हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो श्लोक है उनका भाषांतर यहाँ पढ़ूंगा। हे राजन, कृत्रिम स्वर्ग में जिन्हें बिल स्वर्ग कहते हैं, मय नामक एक महादानव है जो अत्यंत कुशल कलाकार तथा वास्तुशिल्पी है। उसने अनेक अलंकृत पुरियों का निर्माण किया है, जहां अनेक विचित्र भवन, द्वार, सभा भवन, मंदिर आंगन तथा मंदिर प्रांगण एवं विदेशियों के रहने के विश्रामालय तथा आवास है। इन ग्रहों के अधिपतियों के भवनों को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया है। ये भवन नागों तथा असुरों से अतिरिक्त अनेक कबूतरों, तोतों तथा अन्य पक्षियों से परिपूर्ण है। कुल मिलाकर ये कृत्रिम स्वर्गिक पुरिया अत्यंत आकर्षक ढंग से अलंकृत की गई है। कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे स्वर्गलोक के उद्यानों की शोभा को मात करने वाले हैं। उन उद्यानों के वृक्ष लताओं से लिपटे जाकर फलों तथा फूलों से लदी शाखाओं के भार से झुकते हैं, जिसके कारण वे अतीव सुंदर लगते हैं। यह सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली और मन को भोगेच्छा से प्रफुल्लित कर देने वाली है। वह अनेक जलाशय एवं झील है जिनका जल निर्मल पारदर्शी है तथा मछलियों के कूदने से उद्वेलित होता रहता है, और कुमुदनी, कुवलय, कल्हार तथा नील एवं लाल कमल के पुष्पों से सुशोभित रहता है। झीलों में चक्रवाक के जोड़े तथा अन्य अनेक जलपक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत आह्लाद होता है। चूंकि उन अधलोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अतः काल दिन तथा रात में विभाजित नहीं है, जिसके फलस्वरूप वहां काल से उत्पन्न भय नहीं रहता। वहां अनेक बड़े बड़े सर्प निवास करते हैं, जिनके फनों पर मणि होते हैं, और इन मणियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। चूंकि इन लोकों के निवासी अद्भुत जड़ी बूटियों से बने रस तथा रसायन का पान करते हैं और उनमें स्नान करते हैं, अतः वे सभी प्रकार की चिंताओं और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। न तो उनके केश सफेद होते हैं, न झुरियां पड़ती है, न वे अशक्त होते हैं। उनकी शारीरिक कांति कभी म्लान नहीं पड़ती। उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती और न तो उन्हें थकान, नई शक्ति का अथवा वृद्धावस्था जन्य उत्साह का अभाव सताता है। वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। भौतिक जगत का यही दोष है। अधलोकों में प्रत्येक वस्तु सुचारू रीति से व्यवस्थित है, वहां सुंदर आवास है, मोहक वायुमंडल है और वहां शारीरिक व्याधियां या मानसिक क्लेश नहीं है। तो भी वहां जो रहते हैं उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म ग्रहण करना होता है। मंद बुद्धि वाले पुरुष सुखोन्मुखी भौतिकतावादी सभ्यता के इस दोष को नहीं समझ सकते। कोई कितना ही क्यों ना अपनी इंद्रियों को भाने वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर ले, किंतु अंततः उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। आसुरी सभ्यता के लोग अपनी परिस्थितियों को अत्यंत सुखद बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे मृत्यु को नहीं रोक पाते। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उनका यह तथाकथित भौतिक स्थूक स्थायी नहीं रह सकता। जब सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है तो उसके तेज के भय से असुरों की गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। हे राजन, अब मैं तुमसे अतल लोक से प्रारंभ करके एक एक करके समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। अतल लोक में यम दानव का पुत्र बल नामक असुर है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। कुछ तथाकथित योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। बल असुर के द्वारा उवासी लेने से स्वैरिणी, कामिनी तथा पुंश्चली के नाम से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। स्वैरिणियां अपने ही समूह के पुरुष से ब्याह करना पसंद करती हैं। कामिनियां किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर लेती हैं और पुंश्चलियां अपना पति बदलती रहती हैं। यदि कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां तुरंत ही उसे बंदी बनाकर हाटक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए बाध्य कर देती है। इस पेय से मनुष्य में प्रचुर कामशक्ति जागृत होती है, जिसका उपयोग वे स्त्रियां अपने इच्छापूर्त हेतु करती हैं। स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन, प्रेमालाप, मंद मुस्कान तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा मोह लेती है। इस प्रकार वे उन्हें अपने साथ संभोग के लिए फुसलाकर जी भरकर काम तृप्ति करती है। कामशक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य अपने आप को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान और सक्षम मानने लगता है। वास्तव में मदहोशी के कारण मोहग्रस्त होकर वह सर पर खड़ी मृत्यु की अनदेखी करके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। अतल लोक के नीचे अगला ग्रह वितल है, जहां स्वर्ण खानों के समा स्वामी भगवान शिव अपने गणों तथा भूतों सहित रहते हैं। पिता रूप शिव माता रूप भवानी के साथ विहार करते हैं और इनके वीर्य रज के मिश्रण से हाटकी नामक नदी निकलती है। जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो वह अग्नि नदी को पी जाती है और बाहर थूक देने पर हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस लोग के निवासी असुर अपनी पत्नियों सहित उस स्वर्ण के बने आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करते हैं और इस प्रकार से वे अत्यंत सुखपूर्वक वहां रहते हैं। तो 9 से लेके 17 तक विशेष करके जो हमारी पूरी ब्रह्मांड रचना है उसमें ऊपर के जो स्वर्ग लोक है और नीचे के जो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, तो वहाँ किस तरह का वातावरण है, किस तरह की सुख समृद्धि है और वहाँ के निवासी किस तरह से निवास करते हैं। लेकिन कितना भी सुख हो मृत्यु आनी है, इस तरह से इसमें बताया गया है। और आज विशेष करके हम जिस श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं, 18वां श्लोक। वीतल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है, जहां महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं, जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात और आज भी वहां निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु भगवान श्री विष्णु अदिति के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और केवल 3 पग भूमि मांगकर महाराज बलि को छल कर 3 लोक प्राप्त कर लिए। बलि महाराज के द्वारा सर्वस्व दान देने पर उनसे प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यवान बना दिया। आज भी सुतल लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है, जिसका अर्थ है जिनकी आराधना श्रेष्ठतम चुने हुए संस्कृत श्लोकों से की जाती है, तथा बलि महाराज सरीखे उनके भक्तों की भी पुण्य श्लोक अर्थात करुणा बढ़ाने वाले श्लोकों के रूप में आराधना की जाती है। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व, अपनी संपत्ति, अपना राज्य, यहां तक कि अपना शरीर भी श्री भगवान को अर्पित कर दिया। श्री भगवान ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में बलि महाराज के सम्मुख प्रकट हुए और बलि महाराज ने जो कुछ भी उनके पास था वह सब कुछ दे डाला, फिर भी वे दरिद्र नहीं हुए। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके सफल भक्त बन गए और श्री भगवान के आशीष के साथ उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। इसी प्रकार जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए दान देते हैं, वे कभी घाटे में नहीं रहते। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ सब कुछ वापस मिल जाएगा। दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए धन संग्रह करते हैं, उन्हें चाहिए कि उसमें से श्री भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक पाई भी खर्च न करें। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामैहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी का सर्वश्रेष्ठ स्वागत। तो आज हम इस कक्षा में श्रीमद् भागवत स्कंद 5 अध्याय 24 श्लोक क्रमांक 9 से लेकर 18 तक चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका भाषांतर और तात्पर्य हमने पढ़ा। तो आप सबके आशीर्वाद की याचना करते हुए यहाँ जो भी कुछ वरिष्ठ भक्तों से सुना है और जो भागवत में पढ़ा है उसे दोहराने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। तो यहां विशेष करके ये पूरे पांचवें स्कंद में ये ब्रह्मांड, ये विश्व संरचना कैसी है, इसके बारे में, सूर्य है, चंद्र है, इनकी कक्षा के बारे में, नक्षत्र है, ग्रह लोक है, इनके बारे में वर्णन आया है। और विशेष करके इस अध्याय में जो जिनको बिल स्वर्ग कहा जाता है, बिल स्वर्ग मतलब ऊपर भी स्वर्ग है लेकिन पृथ्वी लोक के नीचे जो हमने पढ़ा, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये जो सात लोक हैं इन्हें बिल स्वर्ग कहा गया है। और सारांश रूप में हम यहां देखेंगे कि अतल लोक में मय दानव के जो पुत्र है बल, उनका निवास है। वितल लोक में भगवान शिव जी का निवास है। सुतल लोक में विरोचन पुत्र बलि महाराज, उनका निवास है। तलातल लोक में मय दानव है, उनका राज्य है। महातल में सर्पों का निवास है। और रसातल में दीति और दनु, इनके जो आसुरी पुत्र है, उनका निवास है। और पाताल लोक में जहाँ बहुत सारे नाग रहते हैं। तो इस तरह से सारांश रूप में जो नीचे जो सब लोग हैं और वहाँ का ऐश्वर्य इस तरह का है कि वहाँ किसी को कोई व्याधि नहीं होती, जो बुढ़ापा उनको नहीं आता, लेकिन फिर भी उनको मृत्यु अवश्य आता है। वो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है उनके प्रकाश से फिर उनको मृत्यु आता है, इस तरह का वर्णन हमने यहाँ देखा। और इसके भाषांतर में जो भी श्लोक है 9 से लेकर 17 तक, कि वहां भी मृत्यु है, जैसे भगवत गीता में आता है आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। तो ब्रह्मलोक से नीचे तक कोई भी जीव है उनको सबको एक ना एक दिन मृत्यु प्राप्त करनी है। और विशेष करके ये जो श्लोक आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, श्लोक क्रमांक 18, तो इसमें वितल लोक में जहां महाराज विरोचन पुत्र बलि महाराज रहते हैं, लेकिन पूर्व इतिहास है कि इस धरातल पे वो राज्य करते थे। तो एक समय ऐसा था कि इतने प्रबल थे और उनका, बलि महाराज का और देवताओं का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में बलि महाराज पराजित हुए, हालांकि उनका मृत्यु हुआ। और बाद में उनके जो गुरु है शुक्राचार्य, संजीवनी देने के बाद बलि महाराज पुनर्जीवित हो गए। और फिर उन्होंने अगला जो भी कार्य कुछ आरंभ किया, प्रारंभ किया, वो अपने गुरु के आदेश अनुसार किया और उससे उनको बहुत शक्ति प्राप्त हुई, तेज प्राप्त हुआ। तो यहाँ एक शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे हम मंगल आरती में सुबह कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। अगर हम भगवान के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है, जो हमारे गुरु है, अगर हम उनको संतुष्ट करते हैं तो वही हमारे भक्ति की परिपूर्णता है। तो ये एक तरह से बलि महाराज हमें सिखा रहे हैं इस उदाहरण से। उन्होंने शुक्राचार्य जी का जो भी उपदेश है उनका पालन किया। बाद में उनके जो दादाजी थे प्रह्लाद महाराज, उनसे भी उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इस वजह से उनको जो उनका जो शक्ति था, उनका जो तेज था, वो उनको पुनर्प्राप्त हुआ। और बाद में शुक्राचार्य जी और जो भृगुवंशीय ब्राह्मण थे उनके मार्गदर्शन में उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ किया। और उस यज्ञ के कारण उनको बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त हुई, जिसमें दिव्य रथ था और बहुत सारी अनेक चीजें थी। और फिर शुक्राचार्य जी ने उनको एक शंख प्रदान किया, प्रह्लाद महाराज ने उनको आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके गले में एक कभी भी न मुरझाने वाली ऐसी माला आशीर्वाद के रूप में उनको प्रदान की। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि गुरु की कृपा और वैष्णव का आशीर्वाद ये प्राप्त करके वास्तव में बलि महाराज, जिनका पहली बार युद्ध में पराजय हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था, लेकिन आज वो इस तरह से सक्षम हो गए कि उन्होंने फिर से स्वर्ग के ऊपर धावा बोल दिया। अभी वो इंद्र को पराजित करने के लिए सज्ज हो गए, लेकिन वो जो शक्ति उनको प्राप्त हुई वास्तव में उनकी निजी शक्ति नहीं थी, वो गुरु का प्रसाद था एक प्रकार से और प्रह्लाद महाराज का आशीर्वाद था। तो इस वजह से वो सक्षम बने। और फिर हम देखते हैं कि जब उन्होंने इंद्रपुरी पर आक्रमण करना चाहा और जब वो आक्रमण करने के लिए निकले, उन्होंने शंख बजाया तो उस शंख ध्वनि से ही पूरा स्वर्गलोक एक प्रकार से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। तो ये इस तरह से फिर जो देवता पत्नी थी और सब देवता थे वो भी देखने लगे कि जिन बलि महाराज को हमने एक प्रकार से पराजित किया था, उनको मृत्यु भी प्राप्त हुआ था, लेकिन आज जिस तरह से जिस तेज के साथ उन्होंने पुनः आक्रमण किया है, हमें लग रहा है कि हम उनको पराजित नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते, इस तरह से उनका शक्ति तेज है। तो इस तरह फिर देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और उनका आश्रय प्राप्त करते हैं। तो स्थिति कौन सी भी हो, हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए, इस तरह से देवता भी हमें सिखाते हैं। तो उन्होंने गुरु का आश्रय लिया और फिर उनसे पूछने लगे कि अभी हम क्या कर सकते, हम कदापि बलि महाराज का अभी पराजय नहीं कर सकते, तो आपका सुझाव चाहिए। तो फिर बृहस्पति जी उनको बताते हैं कि सच है, अभी आप बलि महाराज को पराजित नहीं कर सकते, उनकी शक्ति की गणना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उनको गुरु कृपा मिली है, प्रह्लाद महाराज का आशीर्वाद उनके ऊपर है। हाँ, प्रश्न उठ सकता है कि प्रह्लाद महाराज ने जो आशीर्वाद दिया वो देवताओं को पराजित करने के लिए दिया था क्या? कदापि नहीं। प्रह्लाद महाराज एक महाजन है तो जानते थे कि आगे जाके बलि महाराज को वामन देव की कृपा मिलनी चाहिए। तो प्रह्लाद महाराज का आशीर्वाद जो था वो उस उद्देश्य से था, ना कि देवताओं को बलि महाराज पराजित करें। लेकिन वहां फिर बृहस्पति जी का उपदेश मानते हुए सभी देवताओं ने स्वर्ग का त्याग किया और अलग अलग जगह जाके और छिप गए। और बाद में कोई युद्ध किए बिना ही बलि महाराज ने इंद्र का पद वहां प्राप्त किया, पूरे ब्रह्मांड पर उनका एक प्रकार से राज्य स्थापित हो गया। लेकिन भृगुवंशीय ब्राह्मण जानते थे कि इंद्रपद प्राप्त करने के लिए हमें स्व अश्वमेध यज्ञ, उसका एक कम से कम उसकी पात्रता है, स्व अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तो फिर भृगुवंशीय ब्राह्मण और शुक्राचार्य के मार्गदर्शन से बलि महाराज स्व अश्वमेध यज्ञ करते हैं और फिर उनकी जो कीर्ति है इस यज्ञ के कारण चारों दिशाओं में फैलती है। लेकिन यहां बताया जाता है कि अदिति जो विलाप करने लगती है, क्योंकि उनके जो पुत्र है वो स्वर्गलोक से उनको निष्कासित किया गया है, तो कोई भी पुत्र अगर दुखद अवस्था में है तो माता सुखी नहीं रह सकती। उसी तरह दीति शोक करने लगती है और तब उनके जो पति है कश्यप ऋषि वो ध्यानस्थ थे और जब ध्यान प्रक्रिया के बाहर आने के बाद वो जब माता अदिति को मिलते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से माता जो अदिति है वो शोक कर रही है, जो देवताओं की माता है अदिति, और उनको पूछते हैं कि क्या हुआ, आप ऐसे शोकमग्न अवस्था में क्यों हो, आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है, क्या आपसे कोई वैष्णव अपराध है हुआ है, आपने किसी अतिथि का सम्मान करने में कोई चूक की है, गाय की सेवा करने में आपने कोई कमी रखी है, इस सब कारणों से आपकी हालत हुई है। इस तरह से जो कश्यप ऋषि है उन्हें सवाल करते हैं। फिर अदिति माता जो है उनको कहती है कि आप जैसे महान ऋषि की पत्नी होने के कारण मुझसे ये सब अपराध कदापि नहीं हो सकते, लेकिन मैं मेरे पुत्रों का वियोग, उनकी जो स्थिति है, जो आज स्वर्ग से निष्कासित हुए हैं, तो मैं उनका दुख सहन नहीं कर सकती, तो इसके लिए आप कृपया कुछ तो कीजिए, उनका हित हो ऐसा कुछ कीजिए। तो एक तरह से अपने जो पुत्रों की जो भौतिक बाहरी स्थिति देख के जो विलाप माता अदिति करती है उसको देखते हुए शास्त्र में वर्णन आता है कि एक तरह से कश्यप मुनि वो थोड़ा सा हास्य करते हैं, उनको हंसी उत्पन्न होती है, क्योंकि वो शास्त्र जानते हैं कि जिसका भी इस भौतिक मर्त्य संसार में जन्म हुआ है उसको तो सब गंवाना ही है मृत्यु के रूप में। और अदिति उपुत्र सुख, उपुत्रों की सुख की कामना करती है। शिल प्रभुपाद की एक छोटी सी कविता है, उनका भाषा रूपांतर मराठी में है, जग खेळ हा मायेचा, वो बंगाली कविता है लेकिन उसका मराठी में, जग खेळ हा मायेचा गमे फेस सागराचा, क्षणोक्षणी जन्माई मागुता लया जाई, कोण बंधू माता पिता क्षण भंगूर त्यांची सत्ता, पंचतत्वात्मक देह जड़े घड़े नष्ट होता। मतलब ये जो पांच तत्वों से बना हमारा शरीर है, उसका जन्म होना, उसका मृत्यु होना, ये स्वाभाविक है, तो उसके लिए शोक करने की एक तरह से कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मन में विचार कौन कर रहे हैं? कश्यप मुनि कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो मन में क्या विचार करे कि भगवान की वास्तविक शिक्षा क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे ये बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञ ये मूर्खे विषय के ने दिव, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्ति के बिना अगर कोई भौतिक चीज मांग रहा है तो इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। कृष्ण कहे अम्हा मांगे विषय सुख, अगर हमसे कोई विषय सुख मांग रहा है तो ये सबसे बड़ा मूर्ख है। और भगवान क्या कहते हैं कि आमी विज्ञ, मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आमी विज्ञ, मैं शास्त्र जानता हूं, तो आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय केने दिव, मैं उसको विषय सुख प्रदान नहीं करना कर सकता। स्वचरणामृत दिया, मतलब मैं मेरी भक्ति, मेरा पादाश्रय उनको प्रदान करके विषय भुलाइब, मतलब जो विषय सुख इंद्रिय सुख की जो हम लालसा कर दे उसको भुला दूंगा। तो इस तरह की जो शिक्षा भगवान की है ये कश्यप मुनि जानते हैं, इसीलिए फिर माता अदिति का विलाप भी दूर होना चाहिए, उसकी वांछित इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिए। इसके लिए फिर कश्यप मुनि जिन्होंने ब्रह्मदेव से पयोव्रत नामक विधि जो सुना था उसको विस्तारित रूप से वर्णन करते हैं और सुझाव देते हैं कि ये पयोव्रत विधि जो है ये आप दृढ़ता से करो। अभी श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में इस पयोव्रत विधि का विस्तृत वर्णन है, लेकिन सारांश रूप में अगर पयोव्रत विधि समझना है तो बहुत आसान है। जो हम दैनंदिन जीवन में श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से हमें जो सुबह से लेकर मॉर्निंग प्रोग्राम मिला है, भगवान की आरती करना, भगवान को पुष्प अर्पण करना, भगवान का अभिषेक करना, दान देना, नित्य भागवत का श्रवण करना, यही पयोव्रत विधि है। तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में उसका विस्तृत वर्णन आता है, लेकिन ये सारांश रूप में मैंने बताया है कि ये पयोव्रत विधि है, जिसकी तुलना अगर आज के तारीख में हम किए तो जो ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को बताया है वो वास्तव में शिल प्रभुपाद की कृपा से हमें नित्य दिन क्रम में प्राप्त है। इसीलिए तो शास्त्र क्या कहते हैं, जैसे भागवत श्रवण है, यत्र कृष्ण कथा संति तत्रैव सर्व देवता, यत्र कृष्ण कथा संति तत्रैव सर्व देवता, ऋषय मुनयश्चैव तीर्थानि अखिलानि च। मतलब भागवत पाठ का श्रवण करना, भागवत की कथा करना, ये भी पयोव्रत विधि ही है। और इसका महत्व क्या है, जैसे श्लोक में वर्णन आता है, यत्र कृष्ण कथा संति तत्रैव सर्व देवता, जहां भी भगवान की कथा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, तत्रैव सर्व देवता, वहां सर्व देवी देवता आके बैठते हैं। ऋषय मुनयश्चैव, सभी ब्रह्मांड के ऋषि मुनि भी वो कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। तीर्थानि अखिलानि च, मूर्तिमंत तीर्थ उस कथा में आके बैठते हैं, और वही पयोव्रत विधि है। तो ये कश्यप मुनि माता अदिति को बताती है, जो पयोव्रत विधि रूपाद जी की कृपा से हमें मिला है। और बाद में वो बताते हैं माता अदिति को कि कि आपको ये व्रत दृढ़ता पूर्वक पालन करना है, कोई भी आलस किए बिना इसीलिए तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। मतलब अगर हमें भगवान की भक्ति या साधना करनी है, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, तो उसमें आलस नहीं करना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक कोई भी संकट है कुछ भी है हमें दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए, और हम पूरी तरह से ये जो हमारा मन है भगवान के भक्ति के ऊपर एकाग्र करना चाहिए। यही वास्तविक भक्ति की प्रक्रिया है जो कश्यप मुनि माता अदिति को बताते हैं। तो यही भागवत का एक प्रकार से सार भी है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकुल्लेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। तो हम कोई भी अन्य अभिलाषिता न रखते हुए भगवान के भक्ति में हमारा जो मन है वो एकाग्र करना चाहिए। तो बाद में माता अदिति जो है वो अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर वो पूरा जो पयोव्रत विधि है 12 दिन के लिए कोई भी आलस किए बिना वो करती हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, भगवान खुद उनके सामने प्रकट होते हैं। तो भगवान की कृपा मिलने चाहिए, यही एक वास्तविक उद्देश्य था, ना कि कश्यप मुनि का यह उद्देश्य था कि मेरे पुत्रों के लिए जो अदिति शोक कर रही है वो सब भौतिक इच्छा उनकी पूरी हो, आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण होना चाहिए। तो वही आध्यात्मिक हम जो भी कुछ कार्य करते हैं उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है कि भगवान की कृपा मिलना, और वो भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में वो व्रत करने से माता अदिति के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो फिर वहां देखते हैं कि माता अदिति की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान 8वें स्कंद में वर्णन आता है कि अदिति को समझाते हैं कि आप अदिति के बताए बिना ही भगवान उसे कहते हैं कि आपकी जो मन की इच्छा है कि आपको आपके जो पुत्र है जो निष्कासित हुए हैं उनका स्थान उन्हें पुनः मिलना चाहिए, वो अभी मैं तुरंत उसको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान जैसे हम रोज बोलते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, तो जिनका संरक्षण खुद ब्राह्मणों के द्वारा है, जिनके ऊपर वैष्णव की कृपा है, तो भगवान एक तरह से क्या बताते हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रहलाद महाराज की कृपा बलि महाराज के ऊपर थी, वो भृगुवंशीय सब ब्राह्मण थे, वो जो ब्राह्मण उनका जो उनका आशीर्वाद था उसका तेज उनके ऊपर है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आगे जाके मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर आपकी सहायता करूंगा। और कालावश फिर भगवान माता अदिति के गर्भ में प्रकट होती है, गर्भ में प्रकट होते हैं, और जब वो जब गर्भ प्रवेश भगवान करते हैं तो सारे देवता फिर बहुत खुश हो जाते हैं, विशेष करके ब्रह्मा जी, और वो गर्भस्थ भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, जो ब्रह्मा जी अदिति के गर्भ में प्रकट हुए हुए जो भगवान है उनके लिए प्रार्थना अर्पण करते हैं। नमस्ते पृष्णि गर्भाय वेध गर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्ठाय वैष्णवे। तो इस तरह से ब्रह्मदेव और बाकी सभी जो देवता हैं वो जो भगवान अदिति के गर्भ में हैं उनकी स्तुति करते हैं, और बाद में कुछ कालावश जो भगवान हैं जो मूल रूप में वहां प्रकट होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, गले में कौस्तुभ माला, कंठ में जो कौस्तुभ मणि है, वैजंती माला है, स्त्रीवत्स चिन्ह है, ऐसे रूप में भगवान वहां प्रकट होते हैं, माता अदिति उनकी स्तुति करते हैं, और थोड़े देर के बाद फिर भगवान यहाँ जैसे हमने भाषांतर में पढ़ा कि श्री विष्णु अदिति के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए, और फिर उन्होंने क्या किया, जो बटु ब्राह्मण का रूप वह धारण किया और वो अतिशय तेजोमान सबको आकर्षित करने वाला था, तो इसीलिए सभी देवता वहां प्रकट होते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और अलग अलग जो देवता हैं उनको फिर उपहार भी देते हैं। जैसे सूर्य देव हैं उनको गायत्री प्रदान करते हैं, बृहस्पति उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, कश्यप मुनि जो है वो अपने पुत्र को मुंज और मेखला प्रदान करते हैं, चंद्र जो है उनको ब्रह्मदंड प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी उनको कमंडलु देते हैं, जो सप्तर्षि है वो उनको कुशासन देते हैं, माता सरस्वती उनको रुद्राक्ष माला प्रदान करती हैं, कुबेर जी उनको ब्राह्मण के रूप में है इसीलिए उनको भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं, और माता सती शिव जी की पत्नी है उनको पहली भिक्षा प्रदान करती है। तो इस तरह से जो बटु ब्राह्मण के रूप में वामन देव वहां प्रकट हुए तो सभी देवता वहां उनको प्रणाम करते हैं, उनको भेंट अर्पण करते हैं, और फिर बाद में वहां बहुत बड़ा यज्ञ होता है, भगवान वामन जी उस यज्ञ का समापन करते हैं और तभी उनको पता चलता है महाराज बलि के यज्ञ के बारे में, वहां भी यज्ञ का अनुष्ठान शुरू था। तो फिर बलि महाराज जिस इच्छा से प्रकट हुए थे, वास्तविक बलि महाराज जो प्रह्लाद महाराज के पौत्र थे उनका कल्याण चाहते थे, तो उन्होंने फिर उस यज्ञ स्थली की ओर मार्गस्थ हुए, और जब बलि महाराज उस यज्ञ स्थली में पहुंचे तो वहां के जो भृगुवंशीय ब्राह्मण थे वो सब अचंभित रह गए कि उनको वो जो तेज था भगवान वामन देव का उसको देखते हुए विचार करते हैं कि साक्षात सूर्य यह प्रकट हुआ क्या, वो समझ नहीं पाते कौन है। कोई देवताओं कोई जो ऋषि मुनि है उनको लगता है कि साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए क्या, तो इस तरह से वहां की स्थिति हो जाती है। और उस सभा में फिर अचंभित अवस्था में ही भगवान वामन देव वहां प्रकट हो जाते हैं, बलि आंतरिक रूप से वो इतने भगवान के महान भक्त है वहां उठकर फिर बलि महाराज का स्वागत करते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं और पाद प्रक्षालन किया हुआ जो जल है वो अपने मस्तक पे धारण करते हैं। तो भगवान है, भगवान के भक्त है, उनका पाद प्रक्षालन करना ये भी हमारे भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, एक तरह से सीख हमें यहां मिलती है। और फिर जो बलि महाराज हैं वो क्या बताते कि हे भगवान आपके उपस्थिति से एक तरह से ये यज्ञ सफल हुआ है और आपके इस उपस्थिति से मेरे सभी जो कुल है उसका उद्धार हुआ है। बलि महाराज एक तरह से भक्त थे, हम प्रह्लाद महाराज ने जब हिरण्यकेशिपु के लिए प्रार्थना की थी तब भगवान बताते हैं कि आप जिस कुल में प्रकट हुए हो तो आपके 21 पीढ़ियों का उद्धार तो निश्चित ही है, एक प्रकार उनका वचन था वो भगवान का। वैसे शास्त्र में वर्णन आता है कि अगर एक कोई परिवार में एक भक्त है तो उसका लाभ क्या है, मातृ पितृश्च भार्याम कुल पंक्तिम सुतारितः। अगर एक प्रामाणिक भक्त किसी कुटुंब है, कुटुंब में है, परिवार में है, मातृ पितृश्च भार्याम कुल पंक्तिम सुतारितः, उसके मातृ कुल का उद्धार हो जाता है, उसके पितृकुल का उद्धार हो जाता है, उसकी भार्या है तो उसके भार्या के कुल का भी उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से मेरे सभी जो पुत्र हैं उनका उद्धार आपके उपस्थिति से हुआ है, इस तरह की जो प्रार्थना है वो बलि महाराज भगवान को करते हैं और भगवान का मन जानते हुए वो बोलते हैं कि आप कुछ मांगने की इच्छा से आए हैं तो कृपया करके आपकी जो इच्छा है, अपेक्षित जो भी कुछ है कृपया भगवान आप मांगिए। और फिर भगवान वामन देव बलि महाराज की स्तुति करते हैं कि आपके कुल में प्रह्लाद महाराज हैं, आपके कुल में मतलब जिनके वजह से जिनके लिए प्रह्लाद, इसे तुकाराम महाराज करते हैं प्रह्लादे कारणे नरसिंह झालासी, तो प्रह्लाद के कारण वो खंभे में प्रकट हुए, तो आपका कुल इतना गौरवशाली है कि मैं क्या कहूं। कौन कह रहे हैं, वामन देव बलि महाराज की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि आपके कुल में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं, मतलब हुआ ही नहीं है कि जो दान देने से इनकार करने वाला है। फिर हिरण्याक्ष की स्तुति करते हैं कि उन्होंने इतने शक्तिशाली थे कि उनको पराजित करने के लिए वराहदेव मतलब भगवान को अवतरित होना पड़ा और इतना घनघोर युद्ध करना पड़ा कि हिरण्याक्ष का वध होने के बाद भगवान खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे कि ऐसा कुछ कोई तो योद्धा मिला जिससे मैं युद्ध कर सका। तो भगवान तो इस तरह से हिरण्याक्ष आपके कुल में उत्पन्न हुए। फिर हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का वध होने के बाद उसका प्रतिशोध लेने के लिए जो हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली और भगवान को मारने के लिए आतुर था कि भगवान ने हिरण्यकश्यपु के नासिका से प्रवेश करते हुए उनके हृदय में आश्रय ग्रहण कर लिया था। इस तरह से भागवत में वर्णन आता है कि इस तरह से आपका पूरा जो कुल है वो बहुत श्रेष्ठ है। तो और आपके जो पिता जो है विरोचन वो भी इतने महान है। तो इस तरह से भगवान बलि की स्तुति करते हैं और तीन पग भूमि की याचना करते हैं। तो बलि महाराज के पास पूरा ब्रह्मांड का साम्राज्य था, बोलते तीन पग भूमि, भगवान आप कुछ तो मतलब इतने में क्या, आप जो चाहिए वो मांग सकते हैं। समय की पाबंदी होने के वजह से मुझे थोड़ा सारांश में लेना पड़ेगा, लेकिन भगवान तीन पग ही भूमि क्यों मांगते हैं? एक तरह से वो हमें सिखाते हैं कि हमारे इंद्रिय निग्रह के लिए जितना आवश्यक है उतना ही हमें संग्रह करना चाहिए। एक तरह से वो ये शिक्षा हमें देते हैं और बलि महाराज को भी सूचित करते हैं कि आपने बहुत सारा दूसरों का भी आपके पास है, तो जितना आवश्यक है उतना ही हमें लेना चाहिए। तो अप्रत्यक्ष रूप से बलि को सुझाव देते हैं कि अगर हम अपने आप में संतुष्ट नहीं है, भगवान के कृपा के कारण हमारे परिस्थिति के कारण जो भी कुछ हमें मिला है अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं है तो तीनों लोकों का साम्राज्य भी अगर हमें मिला तो हमें संतुष्टता नहीं मिलेगी। मतलब हमने अगर विश्व यदि अगर पूरा प्राप्त किया तो भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए फिर वो तीन पग भूमि जो है वो मांगते हैं और फिर जो बलि महाराज है उनको देते हैं। फिर शास्त्र में श्रीमद् भागवत के आठवें स्कंद में आता है कि शुक्राचार्य उनको विरोध करते हैं, तो बहुत सारे कारण देते हैं शुक्राचार्य कि क्यों आपको दान नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर बलि महाराज बहुत सारे कारण देते हैं कि क्यों दान देना चाहिए, क्यों दान देना चाहिए। यहाँ तो भगवान खड़े हैं जिनके कृपा से हमें कुछ मिला है और वास्तव में जो कुछ मिला है मृत्यु के बाद उसका अंत तो निश्चित है, तो आज अगर भगवान है तो मुझे वो क्यों नहीं देना चाहिए। तो एक प्रकार से जिन गुरु के कारण उनको शक्ति मिली थी उन्हीं गुरु का वो अवज्ञा करते हैं। तो गुरु की अवज्ञा हम कब कर सकते हैं? अगर हमारी जो प्रामाणिक भक्ति में अगर गुरु की आज्ञा सहायता नहीं है तो उस समय हम गुरु की आज्ञा को रोक सकते हैं या टाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। इस तरह की ये शिक्षा यहाँ हमें मिलती है और शास्त्र भी वर्णन करता है बलि मतलब बहुत सारे उदाहरण देके शुक्राचार्य को समझाते हैं बलि महाराज की। शिवी महाराज का उदाहरण देते हैं कि कैसे शिवी महाराज ने जो हमने ससाना और कबूतर की कथा है सबको पता है बचपन में हमने सुनी है कि वो दूसरे के हित के लिए अपना सबको खुद को नेछावर कर देते हैं। जैसे दधीचि मुनि है, जैसे दुष्यंत पुत्र जो भरत महाराज है उनके वंश में रंतिदेव जी आते हैं, तो उनकी भी एक सुंदर कथा है कि उन्होंने जब व्रत किया था तो वो भी इस तरह के व्यक्ति थे कि दूसरों के लिए देना बस वही देना जानते थे। तो इसीलिए एक 48 दिन का व्रत करने के बाद उनको कुछ थोड़ा सा ग्रहण करने के लिए मिला था, पानी चावल घी और उस दूध का मिश्रित कुछ प्रसाद मिला था। लेकिन वो जब 48 दिनों का निर्जल उपवास करने के बाद वो ग्रहण करने वाले थे तभी वहाँ एक ब्राह्मण आते हैं और वो उनको भिक्षा की याचना करते हैं, तो उसमें से आधा वो उनको देते हैं। फिर वो ग्रहण करने वाले ही थे कि वहाँ एक शूद्र आता है, फिर वो आधा बचा है उसमें से आधा भी उसको देते हैं। बाद में कुछ ग्रहण करने ही वाले थे रंतिदेव कि वहाँ एक व्यक्ति अपने कुत्तों के लेके आता है और क्या बोलता है कि मेरे कुत्ते भूखे हैं, तो फिर जो बचा हुआ है वो कुत्ते को देते हैं। बाद में उनके पास थोड़ा सा जल बचा था, वो प्राशन करने वाले थे तो कोई अतिथि आया, वो बोलते मैं बहुत प्यासा हूं, तो जो बचा हुआ जल था वो भी उसको दे दिया। तो ये हमारी वास्तविक संस्कृति है। जब भी कभी राधा गोपीनाथ प्रभु गुरुकुल में आते थे तो हमें कोई भी एक नीति शास्त्र का कोई तो एक श्लोक सिखाते जाते थे। तो एक सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गव्वा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय इदं शरीर। मतलब ये पूरी सृष्टि निसर्ग ही हमें सिखाता है कि जो भी कुछ है हम बने हैं वो देने के लिए बने हैं। तो जैसे नदी बहती है तो जल खुद के लिए नहीं रखते, वो देती है। गाय का दोहन हम करते हैं, गाय खुद दूध नहीं पीती। परोपकाराय दुहन्ति गवा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, जो वृक्ष है जो जो फल है अपने लिए नहीं रखते, वो दूसरों के लिए देते हैं। उसी तरह से परोपकाराय इदम शरीर, तो यही जो हमारा शरीर भी है जो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है वो परोपकार के लिए, तो हमें देना चाहिए। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि दान देना एक गृहस्थ की जवाबदारी है, कर्तव्य है, और दान को ग्रहण करना ये एक ब्राह्मण है या सन्यासी है, और दान को सही कार्य में लगाना एक सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, उनका वास्तविक कर्तव्य है। तो दान अलग अलग प्रकार के हैं, भगवद गीता में उनका वर्णन आता है, सात्विक दान है, राजसिक दान है, तामसिक दान है, लेकिन सबसे बड़ा दान है जिसको दैवी दान कहते हैं, जो डायरेक्ट भगवान के सेवा में लगना चाहिए। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यज, मतलब ऐसा दान जो किसी तीर्थ क्षेत्र के निर्माण के लिए या भगवान के डायरेक्ट भक्ति के लिए दिया जाता है उससे श्रेष्ठ कुछ है नहीं। और ये दान देने से व्यक्ति, शास्त्र में वर्णन आता है, वो मंगलमय हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, और उसके जो उसका धन है वो एक तरह से बढ़ता है, ना कि वो घटता है। बलि महाराज अगर हम देखें तो बलि महाराज का सब छीनने के बाद सुतल लोक में वास्तविक वो स्वर्ग से भी कई पट ज्यादा उनको ऐश्वर्य मिलता है, और भगवान खुद वहां जाके द्वारपाल बनते हैं। ये लीला है। तो भगवान को हम अगर कुछ देते हैं तो कुछ घटता नहीं। चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर श्लोक और वर्णन आता है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब शांतिपुर में जाते हैं तो अद्वैत आचार्य वह प्रचुर मात्रा में धन का उपयोग सभी भक्तों के सेवा के लिए लगाते हैं। तो एक सुंदर वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, आचार्य गोसाईर भंडार अक्षय अव्यय यत द्रव्य व्यत करे तत द्रव्य हय। आचार्य गोसाईर भंडार अक्षय अव्यय, मतलब वहां जितना भी वो भगवान के भक्ति के लिए व्यय कर रहे थे तो अक्षय बनता जा रहा था, अव्यय मतलब नाश न होने वाला बनते जा। यत द्रव्य व्यत करे, जितना भी व्यय कर रहे थे तत द्रव्य है, तो उसकी परिणति और वो बढ़ता जा रहा था। तो ये शास्त्र प्रमाण है कि अगर हम प्रामाणिकता से भगवान के कार्य के लिए कुछ करें और दान दे, ये जो वास्तविक गृहस्थ का कर्तव्य है, तो कम नहीं होता, उसका शाश्वत लाभ ये होता है। तो इस तरह से इस श्लोक में एक प्रकार के दान की महिमा भी है। और बाद में भगवान जब बलि को दंडित करते हैं, फिर कृपा आशीर्वाद देके उनको जब सुतल लोक में भेजते हैं तो वहां द्वारपाल रहते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले वो शुक्राचार्य क्यों कहते हैं कि अगर इस यज्ञ में कुछ बाकी त्रुटि, बलि महाराज से कुछ त्रुटि है तो उसका पूर्ति कीजिए। तो फिर शुक्राचार्य भी उनकी स्तुति करते हैं कि भगवान जहां आप मूर्तिमंत रूप में प्रकट है उस यज्ञ में कौन सी त्रुटि रह सकती है। और बाद में वहां शुक्राचार्य हरिनाम का आश्रय लेते हुए खुद को मुक्त करवाते हैं। तो अंत में हरिनाम, मतलब हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रहलाद महाराज का वर्णन है, बलि महाराज का वर्णन है, स्थिति कोई भी हो, भौतिक आध्यात्मिक कोई भी हो, लेकिन हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। जैसे संत शिरोमणि तुकोबा राय कहते हैं, पहाते पांडव अखंड वनवासी, मतलब जो पांडव है वो वनवासी थे। पहाते पांडव अखंड वनवासी परित्या देवासी आठवीती, मतलब भगवान का नित्य स्मरण था। प्रह्लादासी पिता करी तो जासनी परितो स्मरे मणि नारायण। प्रह्लाद महाराज को बहुत तकलीफ दी गई लेकिन मन में उन्होंने भगवान को कभी नहीं भूले। सुदामा ब्राह्मण दरिद्रे पीड़िला परी नहीं विसरला पांडुरंगा, मतलब सुदामा ब्राह्मण के पास कुछ धन नहीं था लेकिन उस स्थिति में उन्होंने वो भगवान को नहीं भूले। तो तुकाराम महाराज अंत में कहते हैं, तुका म्हणे तुझा न पडू द्यावा विसर दुखाचे डोंगर झाले तरी, मतलब हे भगवान मुझे यही आशीर्वाद दे दो कि मुझे आपका विस्मरण नहीं होना चाहिए। और बाद में कहते हैं, जन्म मरणाची काय असे चिंता तुझा शरणागता पंढरी राया वदनी तुझे नाम अमृत संजीवनी अस्ता चक्रपाणी भयकाय। मतलब यह देखते हैं कि जन्म मरणाची काय असे चिंता, मतलब जन्म मरण ये जो मृत्यु है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? वदनी तुझे नाम, मुखी नाम, भगवान का नाम का अगर आश्रय है, वदनी तुझे नाम अमृत संजीवनी, तो संजीवनी देखे बलि महाराज को पुनर्जीवित किया था लेकिन अमृत संजीवनी किसे कहा गया है? तो भगवान के नाम को, अस्ता चक्रपाणी भयकाय। तो अगर भगवान का वास्तविक प्रामाणिक रूपता से हम आश्रय लेते हैं तो फिर कोई भय नहीं है। इस तरह से सारांश रूप में हमने देखा कि किस तरह से बिल स्वर्ग जो है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, यहां सभी तरह के ऐश्वर्य है लेकिन मृत्यु से परे कोई है नहीं। और ये भगवान इस श्रृंखला में एक तरह से वर्णन आता है और भगवान हमें शिक्षा देते हैं एक तरह से बलि महाराज को सुतल लोक में भेज के कि किस तरह से बलि महाराज का जो आत्मसमर्पण है, जो हमने शिबी महाराज की या रंतीदेव महाराज की कथा कहते हुए सुना और इससे हमने जो शिक्षा प्राप्त की कि हमें भी देना चाहिए और फिर ये जो प्रकृति है वो किस तरह से हमें देने के लिए सिखाती है। और शास्त्र गीता में भी यज्ञ दान तप ये कार्य हम वर्ज्य नहीं कर सकते, तो ये हमने शिक्षा प्राप्त की। तो माफ कीजिए कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा 5 मिनट समय की पाबंदी है, तो आपके कृपा आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए आज की इस भागवत कक्षा को यहाँ अल्प विराम देता हूँ। जय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।